आशीष के मर्डर के सारे सबूत इशिका के खिलाफ ही इशारा कर रहे थे, इसलिए पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया था। क्रिस्टल चाहे इशिका से कितनी भी नाराज क्यों ना हो, पर उसने इशिका के लिए एक ऐसी जेल प्रोवाइड करवाई थी जिसमें वो अकेली रह सके। इशिका को बेगुनाह साबित करने के लिए वो रात को ही बॉडी का पोस्टमार्टम करने के लिए चली गई। वहीं दूसरी तरफ इशिका जेल के अंदर अकेली थी। वो चहलकदमी करते हुए आज पूरे दिन की घटनाओं पर गौर कर रही थी। टहलते हुए इशिका ने मन ही मन कहा, आखिर किसने किया है ये? अगर पैसों के मामले में मेरे आदमियों ने उसे नहीं फंसाया होता तो मैं ये बात मान लेती कि पैसों के लिए उसे किसी ने मार दिया होगा। मेरे ही अंडर काम करने वाले लोग कभी मुझे फंसाने के लिए ऐसा नहीं करेंगे। दिशांग तो ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। चहलकदमी करते हुए अचानक इशिका रुक गई। उसने भौले चढ़ाकर कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आयशा ने आशीष अंकल को मार दिया हो? इशिका के शक की सुई आयशा के नाम पर रुकी। इशिका ने धीरे से कहा, कोई राज था जिसे छुपाने के लिए आयशा हर महीने आशीष अंकल को इतने पैसे देती थी। आशीष को 1 करोड़ रुपए की जरूरत थी और पहले वो आयशा के पास ही गया था। आयशा को लगा होगा कि जरूर आशीष ने वो राज मुझे बताने की कोशिश की होगी, और यही सोचकर तो उसने आशीष अंकल को नहीं मरवा दिया। ऐसा कौन सा राज है जिसके लिए आयशा इस हद तक चली गई? इशिका को यकीन नहीं हो रहा था कि आयशा ऐसा कैसे कर सकती है। उसने सिर हिलाकर कहा, जब मैं आखिरी बार सिंघानिया विला में थी तब आयशा रोते हुए ऊपर कमरे में गई थी। अकेले वो इतनी बड़ी साजिश को अंजाम नहीं दे सकती, तो क्या कोई और उसके साथ मिला हुआ है? जो भी हो, इस साजिश के पीछे आयशा का ही हाथ है। इशिका ने इन सब घटनाओं के लिए आयशा को जिम्मेदार माना। ऊपर से आयशा के पास आशीष को मारने की वजह भी थी। लेकिन इशिका आयशा का सच साबित करने के लिए बाहर नहीं जा सकती थी। उसका मोबाइल भी जब्त कर लिया गया था। अब उसकी एकमात्र उम्मीद क्रिस्टल से थी। इशिका वहां बैठकर आराम कर रही थी। वो नहीं जानती थी कि उसे यहां आए हुए कितना टाइम बीत चुका है, लेकिन अचानक इशिका ने बहुत सारे लोगों के वहां आने की कदमों की आहट सुनी। जल्द ही उसकी सेल के आगे काफी सारे पुलिस वाले खड़े थे। जिस पुलिस वाले ने उसे अरेस्ट किया था उसने अपनी सीनियर को इशिका की तरफ इशारा करके कहा, इसका नाम इशिका सिंघानिया है, इसे ही प्राइम सस्पेक्ट के तौर पर अरेस्ट किया गया है। इशिका ने पुलिस वाले की वर्दी पर लगे बैच के नाम को पढ़ा। उस पर माधव देशमुख लिखा हुआ था। वो लगभग 35 साल के आसपास था, जिसका रंग हल्का सांवला और चेहरे पर बिल्कुल हल्की दाढ़ी थी। हाइट में काफी लंबा और हट्टा कट्टा था वो। माधव ने इशिका की तरफ गुस्से से देखा और बोला, सारे सबूत पहले ही इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, फिर मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम लोग इसकी इतनी खातिरदारी क्यों कर रहे हो। इसे अभी के अभी पूछताछ करने के लिए इन्वेस्टिगेशन रूम में लेकर आओ। बेवजह केस को इतना खींच कर बढ़ा रहे हो, अभी कन्फेस करवा लेते हैं ताकि मामला निपटे। उसके ऑर्डर देते ही दूसरे ऑफिसर ने जल्दी से सेल का दरवाजा खोला और इशिका को बाहर आने के लिए कहा। इशिका के बाहर आते ही माधव ने उसे आगे की तरफ धकेला और बहुत ही बेरहमी से बोला, अब यहां खड़ी होकर टाइम क्यों बर्बाद कर रही हो, चुपचाप आगे चलो। तुम जैसे क्रिमिनल मेंटेलिटी के लोगों से निपटना मुझे अच्छे से आता है। इशिका ने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां भींच ली थीं। वो जानती थी कि यहां कुछ भी कहना या सफाई देना बेकार था, इसलिए वो आगे की तरफ चलने लगी। इन्वेस्टिगेशन रूम में पहुंचते ही माधव ने इशिका को चेयर पर धक्का दिया और फिर जबरदस्ती उसके हाथों को पीछे हथकड़ी से चेयर के साथ बांध दिया। वो उसके साथ ऐसे पेश आ रहा था जैसे वो कोई सीरियल किलर हो। इशिका गुस्से में तिरछा से देख रही थी, तभी माधव उसके सामने टेबल पर अपना पैर रखकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, नाम? इशिका सिंघानिया, इशिका ने जवाब दिया। उम्र? माधव ने आगे पूछा। 23 साल, इशिका बोली। जेंडर? माधव ने सख्ती से कहा। माधव की बातों से साफ था कि वो जानबूझकर इशिका से उल्टे सीधे सवाल पूछ रहा था। इशिका ने गहरी सांस ली और सख्ती से जवाब में कहा, महिला। विक्टिम के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन था? माधव ने अपने सवालों का सिलसिला जारी रखा। वो मेरे मामा थे, इशिका ने काफी धैर्य के साथ जवाब दिया। माधव ने अपने पास पड़ी फाइल को उठाया और रिपोर्ट को पढ़ते हुए कहा, तो वो एक जुआरी था, अक्सर जुए में पैसे हार जाता और फिर आकर पैसे मांगता था। उसने तुमसे 1 करोड़ रुपए मांगे थे, तुम उससे नफरत करती थी, तुम्हारे पास देने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए तुमने उसे इतनी बेरहमी से मार डाला। इशिका बिना कुछ कहे उसकी तरफ देख रही थी। उसे सब समझ आ रहा था कि कैसे माधव उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था। आपको यही लगता है तो मैं कुछ नहीं कर सकती, इशिका ने सिर हिलाकर कहा। मुझे लगने या ना लगने से क्या होता है, मैं तो बस सबूतों के हिसाब से बता रहा हूँ। तुम्हें बस हाँ या ना में जवाब देना है, ना कि मेरे ऊपर सवाल उठाना है, माधव ने चिढ़ते हुए कहा। इशिका ने गहरी सांस ली और कहा, जब तक मेरा लॉयर नहीं आ जाता तब तक मुझे चुप रहने का अधिकार है। आप मुझसे जबरदस्ती कुछ भी कन्फेस नहीं करवा सकते हैं। उसकी बातें सुनकर माधव और गुस्सा हो गया। वो बोला, अधिकार माई फुट, ये हर एक नागरिक का कर्तव्य होता है कि वो पुलिस की जांच में उनका सहयोग दे। मैं तुम जैसे लोगों को अच्छे से जानता हूँ जो अधिकार की आड़ में गलत करते हैं। चुपचाप मेरे सवालों का जवाब दो, वरना अच्छा नहीं होगा। माधव सीधा खड़ा हुआ और फिर बोला, हमारे पास सबूत है। वहां तुम्हारे अलावा किसी और के फिंगरप्रिंट नहीं मिले हैं। स्टील रॉड उसकी पीठ से अंदर घुसा है। इससे साफ है कि तुमने उसे धकेला और एक्सीडेंटली वो रॉड उसकी पीठ में जाकर घुस गया और उसकी जान चली गई। अगर तुम इन सबको नहीं मानती हो तो हम इसे एक एक्सीडेंटल मौत ना मानते हुए एक प्लान मर्डर का मामला बना देंगे। सोच लो, उसके बाद तुम्हें ज्यादा सजा होगी। बोलते हुए वो इशिका के सामने आया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बताओ तुम उससे नफरत करती थी ना? इशिका ने अपना सिर उठाया और माधव की आंखों में देखते हुए सख्ती से कहा, नहीं। गुस्से में माधव उस पर जोर से चिल्लाकर बोला, तुम झूठ बोल रही हो। अगर तुम उससे नफरत नहीं करती तो उसके पास आने पर उस पर इस तरह हमला नहीं करती। बचने के और भी तरीके हो सकते थे। तुमने उसे धक्का दिया था कि वो जोर से जमीन पर गिरे। इशिका ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, उसने बचने के लिए हमला किया था, क्योंकि जब उसने घर छोड़ा था तब उसके साथ बहुत से इंसिडेंट ऐसे हुए थे जहां लोगों ने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ऐसे में इशिका ने उनसे बचने के लिए डिफेंस आर्ट सीखा। वहां उसने बदले में अटैक करना ही सीखा था, ना कि आराम से काम लेना। इशिका जानती थी कि उसका कुछ भी कहना बेकार होगा, इसलिए वो चुप ही रही। उसे चुप देखकर माधव ने हल्का हंसते हुए कहा, तुम्हें ये लगता है कि तुम चुप रहकर बच जाओगी तो तुम बहुत बड़ी बेवकूफ हो। माधव चलते हुए दूसरी तरफ गया और उसने कमरे में लगी एक बड़ी सी लाइट को चालू किया जो इशिका की कुर्सी के ऊपर लगी हुई थी। वो इतनी तेज थी कि कोई भी लगातार उसके अंदर देखे तो वो अंधा तक हो सकता था। इशिका ने अपना सिर नीचे कर लिया तो माधव ने आकर जबरदस्ती उसे गर्दन से पकड़कर उसका सिर ऊपर कर लिया। इशिका ने अपनी आंखें बंद कर ली, फिर भी उसकी आंखें जलने लगी। वो अपनी आंखों को रगड़कर खुजलाना चाहती थी पर उसके हाथ बंधे थे। इशिका की आंखों में आंसू आने लगे थे। तभी माधव ने चिल्लाकर कहा, बताओ तुमने उसे क्यों मारा? गलती से ही सही तुमने उसकी जान ली है और तुम्हें ये मानना होगा। मैंने किसी को नहीं मारा है, प्लीज इस लाइट को बंद करो, इशिका ने तेज आवाज में चिल्लाकर कहा।
ठीक है, मत मानो, दो घंटे तक इसी लाइट को जलाकर रखूंगा, तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। फिर भी नहीं मानोगी तो पूरी रात इसी लाइट के अंदर बैठना पड़ेगा, तब तो मान जाओगी ना कि तुमने उसे मारा था, माधव ने काफी क्रूरता के साथ कहा। वहीं इशिका की हालत खराब हो रही थी। लगभग 10 मिनट में ही उसकी आंखें बुरी तरह लाल हो गई थीं और उनसे पानी बहने लगा था। माधव था कि पीछे हटने के लिए तैयार ही नहीं था। इसी बीच अभिमन्यु पुलिस स्टेशन में वकील के साथ पहुंचा। वहीं दूसरी तरफ लगभग 2 घंटे बाद पोस्टमार्टम कंप्लीट हो चुका था। रिपोर्ट के हिसाब से आशीष की मौत उस रॉड की वजह से हुई थी और टाइम उसी वक्त के आसपास था जब इशिका कमरे के अंदर पहुंची थी। क्रिस्टल के चेहरे पर निराशा के भाव थे, क्योंकि सारे सबूत इशिका की तरफ ही इशारा कर रहे थे। पोस्टमार्टम पूरा होने के बाद उसकी नज़र कुकीज़ पर पड़ी तो अचानक उसके मुंह से निकला, इशिका ने कुछ खाया नहीं होगा ना? वहां से सब कुछ समेटने के बाद क्रिस्टल ने कुकीज़ को अपने पास छुपाया और जल्दी से इशिका के पास पहुंची। उसने देखा इन्वेस्टिगेशन रूम के आसपास लोग इकट्ठा थे। रूम के बाहर भी एक कमरा बना हुआ था जिसके मॉनिटर पर उसे इशिका दिखाई दी। इशिका को इस तरह देखकर क्रिस्टल को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो दौड़कर अंदर वाले कमरे में गई और लाइट को बंद कर दिया था। अचानक कमरे में दूसरी छोटी लाइट की वजह से अंधेरा महसूस होने लगा। क्रिस्टल जल्दी से इशिका के पास आई तो उसकी आंखें लाल हो रखी थीं। वहीं इशिका ने अपनी अधखुली आंखों से देखा तो उसके पास में क्रिस्टल खड़ी थी। क्रिस्टल ने माधव को घूरते हुए गुस्से में कहा, आपको इसे इन्वेस्टिगेट करने की परमिशन किसने दी? आप जानते हैं ना, इस तरह एक सस्पेक्ट को टॉर्चर करना इलीगल है। तुम चाहो तो इससे पूछ सकती हो, मैंने इसे हाथ भी नहीं लगाया, बस स्पॉटलाइट ही तो चालू की थी, क्योंकि ये एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि इसने उस पर हमला किया था, माधव ने बेपरवाही से जवाब दिया। आपको कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं है पूछताछ करने की? इसे आए हुए अभी ठीक से एक दिन भी नहीं बीता है, क्रिस्टल ने सख्ती से जवाब दिया। मुझे इसे टाइम नहीं देना था, अगर इसे थोड़ा भी टाइम मिलता तो ये बेवजह की कहानी सुनाने लगती, और तुम जानती नहीं हो कि बाहर एक अमीर आदमी मौजूद है, जरूर अब तक तो वो इसकी जमानत के लिए वकील भी लेकर पहुंच चुका होगा, माधव ने गुस्से में जवाब दिया। क्रिस्टल ने गहरी सांस ली और फिर धीमी आवाज में कहा, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी जमानत नहीं हो सकती है। तो मैं अमीर लोगों को जानती नहीं हूँ, ये जमानत लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। देखना, अचानक से इसके एक ऐसी अजीब बीमारी निकल आएगी जिसके बारे में हमने सुना तक नहीं होगा। बीमारी के बहाने इसे बेल मिल जाएगी और फिर ये किसी दूसरे देश में भाग जाएगी। हमेशा की तरह ये केस तारीखों पर लटका रहेगा, माधव ने अपनी सारी भड़ास निकालते हुए कहा। वैसे भी ये आम था, कोई भी हाई प्रोफाइल केस आता तो अक्सर मेडिकल सर्टिफिकेट के चलते ही सस्पेक्ट को जमानत मिल जाती थी। इस बार इंस्पेक्टर माधव किसी भी तरह ढील नहीं देना चाहते थे। मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप जानते हैं कि मेरे लिए मेरी जॉब और ये यूनिफॉर्म क्या मायने रखती है। मैं इसे साक्षी मानकर कहती हूँ कि ये कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करेगी, क्रिस्टल ने जवाब दिया। तुम बहुत भोली हो, माधव ने हंसते हुए कहा। माधव और क्रिस्टल दोनों ही वहां काफी टाइम से काम कर रहे थे तो एक दूसरे से अच्छी तरह वाकिफ थे। क्रिस्टल जानती थी कि माधव ऐसा क्यों कह रहा था। वो गहरी सांस लेकर बोली, मैं जानती हूं कि आपके कई केस में ऐसा हुआ है जहां सस्पेक्ट बीमारी का बहाना बनाकर बेल लेकर भाग जाते हैं, लेकिन मेरा यकीन कीजिए इशिका ऐसी नहीं है। माधव ने सिर हिलाया और कहा, कहाना तुम भोली हो, जाकर देखो बाहर इसका लॉयर आया हुआ है और वो इस शहर का सबसे बड़ा लॉयर है। जमानत के लिए उन्होंने यही बहाना लगाया है कि ये बीमार है।
क्रिस्टल इस बारे में कुछ नहीं जानती थी, तो वहीं ऊपर लॉबी में दिशांक अभिमन्यु के साथ था। वो परेशानी में इधर उधर चहलकदमी कर रहा था। उसने अभिमन्यु से कहा, अभी ये सब होना जरूरी था क्या? ये महीने का सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है, उन्हें जमानत मिल जाएगी ना, इस टाइम में उन्हें इलाज की सख्त जरूरत होती है। अभिमन्यु को कुछ समझ नहीं आया। उसने हैरानी से पूछा, किस तरह का इलाज? क्या उसे कोई बीमारी है? दिशांक ने हाँ भरते हुए कहा, उन्हें सीवियर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। इसका मतलब साफ था कि इशिका की बॉडी में आयरन की सख्त कमी थी। अभिमन्यु को कुछ समझ नहीं आया। इस तरह की बीमारी के बारे में वो ज्यादा नहीं जानता था, इसलिए उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। अभिमन्यु को सामान्य देखकर दिशांक ने परेशान चेहरे के साथ कहा, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर लग रहा है कि आप इसे नॉर्मल समझ रहे हो, पर ये नॉर्मल नहीं है। अक्सर आयरन की कमी सप्लीमेंट लेकर पूरी की जा सकती है, लेकिन उनकी बीमारी बहुत अजीब है। मैंने कहा ना, उन्हें सीवियर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। अभिमन्यु दिशांक से समझने की कोशिश कर रहा था, तभी दिशांक ने आगे कहा, हमने बहुत सारे टेस्ट करवाए लेकिन कुछ सामने नहीं आया। बस इतना पता होता है कि उनकी बॉडी अचानक से आयरन कंज्यूम करना बंद कर देती है, इसलिए उन्हें आयरन इन्फ्यूजन लेना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली कल ही इन्फ्यूजन की डेट है, और अगर इन्फ्यूजन टाइम पर नहीं मिला तो क्या होगा? अभिमन्यु ने पूछा। आपको सुनकर हैरानी होगी, लेकिन पहले उसकी बॉडी कांपने लगेगी, फिर वो धीरे धीरे कमजोर होने लगेगी, इतनी कमजोर कि खड़ी भी नहीं हो पाएगी, और फिर एक मेंटल ट्रॉमा में जा सकती है। और फिर भी अगर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो आयरन लेवल जीरो होने की वजह से जान भी जा सकती है, दिशांक ने सब कुछ बताया। आखिरकार वो इशिका के साथ इतने वक्त से था, तो वो उसकी इस बीमारी के बारे में अच्छे से जानता था। सब कुछ सुनकर अभिमन्यु हल्का परेशान हो गया। वो लॉयर से कुछ कहता, उससे पहले लॉयर ने निराशा के साथ कहा, मिस्टर राजवंश, हमें बेल लेने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है।